अध्याय 6 राज्य और उसके तत्व। राज्य की परिभाषा। राज्य का अर्थ। राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है, इसमें राज्य का अध्ययन किया जाता है। अतः सबसे पहले हमें राज्य के अर्थ और रूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आज राज्य का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। भारत तथा अमेरिका के संविधान में संघ की इकाइयों को राज्य कहा जाता है, जैसे बिहार राज्य, बंगाल राज्य, न्यूयॉर्क राज्य, ओहियो राज्य इत्यादि। लेकिन राजनीति शास्त्र की दृष्टि से ये राज्य नहीं है, बल्कि एक राज्य के उपखंड हैं। राज्य का आवश्यक तत्व संप्रभुता इनमें नहीं पाई जाती। साधारण बोलचाल में राज्य का राष्ट्रीय, समाज, सरकार आदि के पर्यायवाची रूप में प्रयोग होता है, लेकिन इस तरह के प्रयोग अशुद्ध और अवैज्ञानिक हैं। राजनीति शास्त्र में राज्य का प्रयोग विशिष्ट तथा वैज्ञानिक अर्थ में किया जाता है। राजनीतिक रूप से संगठित समाज को राज्य कहते हैं, अर्थात राज्य एक समाज है और वह समाज राजनीतिक रूप में संगठित है। समाज से तात्पर्य एक जनसमूह तथा निश्चित भूभाग से है और राजनीतिक रूप से संगठित का अभिप्राय एक सार्वभौम सत्ता और उसके उपयोग के लिए सरकार से है। निष्कर्ष है, वैज्ञानिक अर्थ में राज्य शब्द मानवों के उस समूह का संकेत करता है जिसमें ऐसी संगठित सरकारें के अधीन एक निश्चित प्रदेश पर अधिकार हो जिस पर कोई आंतरिक या बाहरी नियंत्रण ना हो। राज्य की परिभाषा। यद्यपि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य का उपयोग निश्चित तथा विशिष्ट अर्थ में किया जाता है, फिर भी कोई दो लेखक राज्य की परिभाषा पर एकमत नहीं है। राजनीति शास्त्र के सभी विचारकों ने पृथक पृथक रूप में राज्य की परिभाषा दी है। आरएस मैकाइवर ने कहा है कि यह आश्चर्य की बात है कि राज्य जैसे स्पष्ट शब्द की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से दी हैं। इसका कारण है राज्य के प्रति विद्वानों की दृष्टिकोण में विभिन्नता। समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, विधिशास्त्री, दार्शनिक और राजनीति शास्त्री अपने अपने दृष्टिकोण से राज्य की परिभाषा और व्याख्या करते हैं। कुछ विद्वान राज्य को केवल वर्ग संगठन मानते हैं तो कुछ संपूर्ण समाज का संगठन, कुछ विचारक राज्य को वैध संगठन बतलाते हैं, कुछ विद्वान उसे राष्ट्र का पर्यायवाची समझते हैं, अनेक विचारक राज्य को सुरक्षा का जीवन बीमा निकाय कहते हैं। राजनीति शास्त्रियों का एक समूह राज्य को आवश्यक बुराई बतलाता है, अनेक विद्वान राज्य को ईश्वरीय वरदान कहते हैं, कुछ लोग उसे नियम के रूप में स्वीकारते हैं, अनेक विद्वानों का कथन है कि राज्य समाज ही है। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान सुलजे ने ठीक ही कहा कि राज्य शब्द की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितने की राजनीति के लेखक। प्राचीन और मध्ययुगीन परिभाषाएं। प्राचीन तथा मध्ययुग के कतिपय विचारकों द्वारा प्रस्तुत राज्य की परिभाषाएं ये हैं। पहला, अरस्तु। राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य संपन्न जीवन की प्राप्ति है। यह परिभाषा कई दृष्टियों से दोषपूर्ण है। प्रथम है, इस परिभाषा के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, लेकिन आधुनिक विचारक राज्य को व्यक्तियों की संस्था मानते हैं। द्वितीय, इस परिभाषा में राज्य के सर्वाधिक आवश्यक तत्व संप्रभुता का उल्लेख नहीं मिलता। तृतीय, आधुनिक राज्यों में सिर्फ राज्य, परिवार और गांव ही नहीं पाए जाते, बल्कि अन्य प्रकार के समुदाय भी उनमें पाए जाते हैं। चतुर्थ, इस परिभाषा में राज्य के केवल लोक कल्याणकारी रूप को प्रधानता दी गई है, परंतु राज्य की अनेक नकारात्मक कार्य भी करने पड़ते हैं। यह परिभाषा यथार्थवादी नहीं बल्कि आदर्शवादी है। दूसरा, सिसरो। राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिससे यह भावना विद्यमान हो कि सभी मनुष्यों को उन समुदायों को लाभ का परस्पर साथ मिलकर उपयोग करना है। इस परिभाषा में भी उपयुक्त दोष मौजूद है। संत ऑगस्टाइन, राज्य ऐसे व्यक्तियों के समझौते द्वारा निर्मित संस्था है जिन्होंने अपने संगठन विधि और कर्तव्यों के प्रयोग और पूर्ति के लिए पारस्परिक संपर्क की लाभ की प्राप्ति के लिए बनाया है। यह परिभाषा भी आधुनिक दृष्टिकोण से अपूर्ण है। आधुनिक युगीन परिभाषाएं, यहाँ हम उन विद्वानों की परिभाषाओं की चर्चा करेंगे जो आधुनिक युग की परिभाषाओं से बहुत निकट हैं। पहला, ह्यूगो ग्रेवसस, राज्य ऐसे स्वतंत्र मनुष्यों का एक पूर्ण समाज है जो अधिकार के उपभोग के लिए तथा समान उपयोगिता के लिए परस्पर बंधे हुए हैं। इसमें राज्य के अपरिहार्य तत्व सरकार तथा संप्रभुता का उल्लेख नहीं है। दूसरा, बोंदा, राज्य अपने सामान्य संपत्ति सहित परिवारों का एक समुदाय है जो सर्वोच्च सत्ता और विवेक बुद्धि द्वारा नियंत्रित है। इस परिभाषा में भी राज्य के कतिपय अनिवार्य तत्वों भूमि तथा संप्रभुता का उल्लेख नहीं है। तीसरा, हॉप, राज्य एक ऐसा व्यक्ति है जो पारस्परिक समझौते के आधार पर एक जनसमूह के लिए उस जनशक्ति के समस्त साधनों के आवश्यकता अनुसार जनता की शांति और उसकी सुरक्षा के लिए प्रयोग कर सके। चौथा, हीगेल, राज्य एक नैतिक भावमूर्त रूप है। इसमें वस्तु रूप आत्मा और दृढ़ स्वतंत्रता का सम्मिश्रण है। आधुनिक काल के विद्वानों की परिभाषाएं, आधुनिक काल के कुछ विद्वानों द्वारा दी गई राज्य की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहला, बुलंदशैली, किसी निश्चित भू प्रदेश में राजनीतिक तौर पर संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। दूसरा, वुड्रो विल्सन, एक निश्चित भूभाग के कानून के लिए संगठित जन समुदाय को राज्य कहते हैं। तीसरा, हॉलैंड, राज्य मनुष्यों का बहुसंख्यक समाज है जो साधारणतः किसी निश्चित भूभाग पर बसा है जिसमें बहुमत या किसी निश्चित वर्ग का मत अपनी शक्ति के आधार पर विरोधी तत्वों का किसी भी संस्था के विरुद्ध विजय होता है। फिल्मोर, राज्य ऐसा जनसमूह है जो स्थायी रूप से एक निश्चित भूभाग पर निवास करता हो जो समान कानून अभ्यास एवं प्रथाओं के द्वारा आपस में एक राजनीतिक समाज के रूप में संगठित हो जो एक संगठित सरकार के माध्यम से अपनी सीमा के अंतर्गत समस्त व्यक्तियों तथा वस्तुओं पर अपनी सार्वभौम सत्ता पर नियंत्रण रखता हो तथा जो युद्ध एवं शांति की स्थापना करने की क्षमता रखता हो। राज्य के मूल तत्व उपयुक्त परिभाषा से यह ज्ञात होता है कि विभिन्न विद्वान राज्य के आवश्यक तत्वों पर एकमत हैं। विलोबी के अनुसार राज्य के तीन आवश्यक तत्व हैं, जनता, शासन तंत्र और संविधान। बुलंदशैली के अनुसार राज्य के सात आवश्यक तत्व हैं। पहला, जनसंख्या, दूसरा, स्थान, तीसरा, संगठन, चौथा, शासक, पांचवां, जीवन, छठवां, सदाचार के सिद्धांत और सातवां, नरंगुण की प्रधानता। लेकिन आधुनिक राजनीतिक शास्त्र विजेताओं ने राज्य के केवल चार तत्व ही माने हैं। पहला, जनसंख्या, दूसरा, भूभाग, तीसरा, सरकार, चौथा, संप्रभुता। इन चार तत्वों के प्रथम दो तत्व, जनसंख्या और भूभाग, राज्य के भौतिक आधार हैं और अंतिम दो तत्व, सरकार तथा संप्रभुता, राज्य के आध्यात्मिक आधार। अब हम इन तत्वों की पृथक पृथक व्याख्या करेंगे। पहला, जनसंख्या। किसी भी मानवीय संस्था की रचना के लिए जनसंख्या का अस्तित्व सबसे आवश्यक तत्व है। यह व्यक्तिगत तत्व प्रदान करता है। राज्य भी एक मानवीय समुदाय है। मनुष्य ही राज्य का निर्माण करते हैं। व्यक्ति के बिना राज्य का अस्तित्व संभव नहीं। गार्नर के शब्दों में, राज्य के अस्तित्व के लिए जनता रूपी भौगोलिक तत्व की निरपेक्ष आवश्यकता है। जनता के अभाव में राज्य की कल्पना संभव नहीं। इसके बिना
ना तो शासक हो सकते हैं और ना शासित। इसलिए बलनसली ने कहा है कि राज्य के व्यक्तित्व का आधार जनता में निहित है। राज्य के तत्व जनसंख्या की व्याख्या करने के लिए हमें चार प्रश्नों का विचार करना होगा। पहला, जनसंख्या कितनी होगी। दूसरा, कानूनी दृष्टि से जनसंख्या के कितने वर्ग होंगे। तीसरा, गुण के आधार पर जनसंख्या कौन सा होगा। चौथा, जनसंख्या से संबंधित कौन सी संस्थाएं हैं। पांचवा, बहुधा यह प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य के निर्माण के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। प्राचीन काल के राजनीतिक विचारक इस प्रश्न को बहुत महत्व देते थे। प्लेटो का विचार था कि आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। अरस्तु ने राज्य के लिए कोई निश्चित जनसंख्या नहीं बतलाई। उसने सिर्फ इतना कहा कि किसी राज्य के सुसंगठन के लिए आवश्यक है कि उसमें जनसंख्या और भूमि विस्तार की कुछ सीमा होनी चाहिए। जनसंख्या ना तो अत्यधिक होनी चाहिए और ना ही अति न्यून। वह इतनी होनी चाहिए जिसमें वह स्वतः परिपूर्ण होकर अच्छी तरह शासित हो सके। रूसो ने भी प्राचीन विद्वानों की भांति सीमित जनसंख्या का समर्थक था। वह प्राचीन नगर राज्यों का भक्त था। वह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थक था जिसकी सफलता के लिए थोड़ी सी जनसंख्या होनी चाहिए। अतः उसके विचार में 10,000 आदर्श जनसंख्या थी। अरस्तु की भांति उसने भी बतलाया कि भूप्रदेश तथा जनसंख्या के बीच अनुपात होना चाहिए। इन विद्वानों के आदर्श प्राचीन नगर राज्य भी थे, लेकिन आधुनिक काल में विज्ञान की उन्नति तथा आवागमन के साधनों के विकास के कारण परिस्थितियां बिल्कुल बदल गईं। जनसंख्या के आधार का महत्व राज्य के जीवन में नहीं के बराबर रह गया। आजकल चीन और भारत जैसे बड़े बड़े राज्यों को लेकर मोनाको तथा लग्जेमबर्ग जैसे छोटे छोटे राज्य भी पाए जाते हैं। एक और चीन की जनसंख्या 100 करोड़ है तथा भारत की जनसंख्या 84 करोड़ है, तो दूसरी ओर मोनाको तथा लग्जेमबर्ग की जनसंख्या कुछ हजारों तक ही सीमित है। आज विज्ञान ने सारी पृथ्वी को एक नगर बना दिया है। यदि पृथ्वी के एक कोने में कोई घटना घटती है तो कुछ घंटों में यह पूरी दुनिया में गूंज जाती है। इसलिए बड़े बड़े राज्यों की कल्पना आज संभव नहीं रह गई। उनका शासन भी उतना कुशलतापूर्वक हो सकता है जितना कि प्राचीन काल में नगर राज्यों का होता था। प्रतिनिधात्मक प्रणाली के जरिए आज अधिक जनसंख्या वाले देशों का शासन बड़ा सरल हो गया है। आधुनिक विश्व युद्धों को नजर रखते हुए बड़े राज्यों का अस्तित्व अधिक सुरक्षित जान पड़ता है। देश की जनसंख्या ही युद्ध और शक्ति का साधन समझी जाती है। अतः आधुनिक प्रवृत्ति विशाल जनसंख्या वाले राज्यों के पक्ष में है। इसलिए सोवियत रूस जैसे देश के अधिक बच्चे पैदा करने वाली कुछ माताएं पुरस्कृत की जाती हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जनसंख्या की सीमा ही नहीं होनी चाहिए। किसी राज्य की उन्नति तथा सफलता तभी संभव है जब राज्य अपने सभी नागरिकों को आवश्यक भोजन, वस्त्र, शिक्षा आदि दे सके। अर्थात राज्य का कर्तव्य यह है कि पूरी जनसंख्या का आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विकास कर सके। लेकिन प्रत्येक राज्य की भूमि, शक्ति तथा स्त्रोत सीमित हैं। इसके अनुपात में भी जनसंख्या होनी चाहिए। अतः राज्य के संगठन को स्थिर रखने के लिए जनसंख्या प्राप्त होनी चाहिए, पर इसे ना तो प्रादेशिक क्षेत्र में बड़ा होना चाहिए और ना राज्य का पालन क्षमता के साधनों से अधिक होना चाहिए। गेटेल का विचार निष्कर्ष रूप से उद्धत किया जा सकता है। राज्य के निर्माण के लिए मनुष्यों की आवश्यकता, जनसंख्या की कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। आबादी इतनी होनी चाहिए जो राज्य संगठन को कायम रखने के लिए पर्याप्त हो और जिसके शासक, शासित और सार्वजनिक एवं व्यक्तित्व कार्यों की विभिन्नता झलक जाए। आबादी किसी भी हालत में राज्य के प्रादेशिक सीमा और भरण पोषण करने की शक्ति से अधिक ना हो। कानून की दृष्टि से राज्य की जनसंख्या के दो वर्गीकरण किए जा सकते हैं, शासक और शासित तथा नागरिक और अनागरिक। दूसरों का मत था कि राज्य की जनता के दो रूप होते हैं, जो लोग राज्य की नीति निर्धारित करते हैं वे शासक होते हैं और जो इस नीति का पालन करते हैं उन्हें शासित होते हैं। लेकिन आज के प्रजातंत्र में यह सत्य नहीं है, शासक और शासित में सदा उलटफेर होता रहता है। एक विचारक ने इस तथ्य को दूसरे और रूप में देखा है। आधुनिक राज्यों में नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं और कुछ कर्तव्य। जब वे अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो शासक कहलाते हैं और जब कर्तव्य का पालन करते हैं तब शासित। गेटेल ने राज्य की जनसंख्या को दो भागों में रखा है, नागरिक और अनागरिक। नागरिक वे हैं जिन्हें अधिकार और कर्तव्य प्राप्त हैं तथा जो शासन कार्य में सक्रिय भाग लेते हैं। अनागरिकों को ना तो राज्य की ओर से कोई अधिकार प्राप्त है और ना वे राज्य के कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जैसे छोटे बच्चे, विदेशी आदि। ग, आकार के अतिरिक्त जनसंख्या का दूसरा पहलू उसका गुण है। नागरिकों के गुण पर ही वस्तुतः राज्य की उन्नति अवनति निर्भर करती है। राज्य की उन्नति के लिए नागरिकों को विचारशील, प्रतिभावान, बुद्धिमान तथा कर्मठ होना चाहिए। अरस्तु के विचार अनुसार श्रेष्ठ नागरिक ही राज्य का निर्माण कर सकते हैं। घ, जनसंख्या के संबंध में आधुनिक राज्यों के अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप अल्पवर्गों की समस्या आधुनिक राजनीति की एक बड़ी समस्या है। भारत में अल्पवर्गों की समस्या के चलते देश का विभाजन करना पड़ा। यहूदियों की समस्या ने इजराइल नामक देश को जन्म दिया। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति इसी समस्या का परिणाम है। इसी प्रकार अन्य राजनीतिक समस्याएं हैं, जैसे अधिक जनसंख्या, प्रतिनिधित्व की समस्या, लेकिन वे समस्याएं व्यावहारिक राजनीति की हैं, राजनीति विज्ञान से उनका संबंध नहीं है। दूसरा, भूभाग। राज्य का दूसरा अनिवार्य तत्व भूमि है। इसके बिना राज्य का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लेखकों ने भूमि को राज्य का आवश्यक अंग नहीं माना है, जैसे लियोन, ड्यूबी, सीली, विलोबी आदि। सीली के मतानुसार यदि केवल सरकार के सिद्धांत के अनुसार कोई जनसमूह इकाई के रूप में संगठित है तो उसे हम राज्य ही कहेंगे। विलोबी के शब्दों में राज्य अपने में ना तो जनसंख्या है, ना सरकार, ना अदालत है और ना संविधान। सच यह है कि राज्य वह प्रदेश भी नहीं जिस पर राज्य की प्रभुसत्ता मानी जाती है, अर्थात जिस पर आदेश चलता है। राज्य वास्तव में निश्चित व्यक्तियों का एक समुदाय है जिसको नागरिक इकाई के रूप में संगठित किया गया हो। लेकिन आधुनिक विद्वानों ने भूभाग की अनिवार्यता पर बल दिया है। इस संबंध में कलवर, विल्सन, बलनसली, गॉर्नर आदि लेखकों के नाम उल्लेखनीय हैं। सर्वप्रथम कलवर ने राज्य को नागरिकों का ऐसा समाज बतलाया था जिसकी एक निश्चित भूमि हो। बलनसली का कहना है कि राज्य का व्यक्तित्व आधार जनता है, उसका भौतिक आधार भूमि है। जनता उस समय तक राज्य का रूप धारण नहीं कर सकती जब तक कोई निश्चित प्रदेश ना हो। गार्नर के शब्दों में व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह कहना कठिन है कि किस प्रकार एक खानाबदोश जाति को राज्य कहा जाए। तात्पर्य यह है कि निश्चित भूभाग के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए खानाबदोश कबीले जो एक जगह से दूसरी जगह मारे मारे फिरते हैं एक राज्य का निर्माण नहीं कर सकते। एक निश्चित भूखंड पर अधिकार जमाने के बाद ही वे राज्य होने का दावा कर सकते हैं। एक प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि 20वीं शताब्दी में यहूदियों ने जब तक अपना स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए भूभाग नहीं प्राप्त कर लिया तब तक उन्होंने अपने को एक राज्य स्वीकार नहीं किया। भूमि के आधार पर इजराइल राज्य की स्थापना हुई। राज्य के लिए भूमि का महत्व दृष्टिकोण से है। निश्चित प्रदेश के बिना कोई जनसमूह ना तो बंधुत्व की भावना से प्रेरित होगा और ना उसमें एकता की शक्ति आ सकेगी जो राज्य के निर्माण में मौलिक तत्व कहे जाएंगे। भूमि को राज्य का दे नहीं कहा जा सकता, भूमि ही राज्य की स्थिरता प्रदान करती है। नागरिकता एवं संप्रभुता भूमि की सीमा के ही आधार पर बनती है। भूमि के ही चलते राज्य और उसके अंतर्गत अन्य समुदायों के बीच अंतर बताया जा सकता है। भूमि के चलते ही राज्य की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेवारियों की निश्चित किया जा सकता है। अतः भूमि राज्य का अनिवार्य तत्व है। जनसंख्या के आधार की तरह अब हमें यह देखना है कि राज्य के लिए भूमि का विस्तार कितना होना चाहिए। प्राचीन काल के विद्वानों ने इस समस्या पर विचार किया था। वे छोटे छोटे राज्यों के पक्ष में थे। यूनानी विद्वान प्लेटो और अरस्तु पर तत्कालीन नगर राज्यों का प्रभाव था। प्लेटो और अरस्तु दोनों ने सामान्य विस्तार के राज्यों का समर्थन किया। 18वीं सदी में रूसों ने भी इस मत से सहमति व्यक्त की कि स्वस्थ राज्य केवल सीमित प्रादेशिक क्षेत्र में ही निर्मित हो सकता है। उसका कहना था कि प्रकृति ने जिस प्रकार मनुष्य की कद और ऊंचाई की एक सीमा रखी है, उसी प्रकार राज्य की एक सीमा होती है। वह छोटे छोटे नगर राज्यों के पक्ष में था क्योंकि उसका प्रत्यक्ष प्रजातंत्र केवल छोटे छोटे राज्यों में संभव और सफल हो सकता था। रूसों ने यह भी कहा कि राज्य के भूमि विस्तार और शासन तंत्र के स्वरूप में ही परस्पर संबंध है। उदाहरणतः शासन केवल बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त है, सामान्य वर्गफल वाले राज्यों के लिए कुलीनतंत्र और छोटे राज्यों के लिए जनतंत्र उपयुक्त है। उसी प्रकार मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि जनतंत्रातीत शासन छोटे वर्गफल वाले राज्यों के शासन के लिए राजतंत्रीय और विशाल वर्गमील वाले राज्यों के लिए निरंकुश शासन अच्छा है। डी टॉकविले इस बात का समर्थन करता है कि बड़े राज्यों के लिए गणतंत्रीय प्रणाली ठीक नहीं। रूसो और टॉकविले की भांति स्टुअर्ट मिल ने कहा है कि राज्यों के लिए केंद्रीय शासन की उपयुक्त होता है। लेकिन आज छोटे राज्यों का जमाना खत्म हो गया, राज्यों की सत्यता कायम हो चुकी है। आज के लेखक भी बड़े राज्यों के पक्ष में ही हैं। अब राज्यों के गणतंत्रीय शासन व्यवस्था का प्रयोग हो रहा है और इन विशाल देशों के व्यवस्था में सफल भी हो रहे हैं। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस ऐसे देशों के नमूने हैं जिनकी विशालता और सफलता को देखकर रूसों को ईर्ष्या होती। जॉन स्टुअर्ट ने कहा कि आधुनिक युग की पूर्ण विशेषता यह है कि दूरी घटती जा रही है और विश्व प्रतिदिन संकुचित होता जा रहा है। ऐसा वैज्ञानिक प्रगति के कारण ही संभव हो सकता है। रेल, तार, बेतार, यातायात आदि की सुविधाओं के कारण राज्य के आकार की विशालता की बाधा नहीं रह गई। इसके अलावा विकेंद्रीकरण, संघवाद और स्थानीय स्वशासन के सिद्धांतों ने विशाल राज्यों की शासन व्यवस्था की कठिनाइयों को दूर कर दिया है। विशाल राज्य अब एक मूर्त सत्य बन गए हैं। जैसे फिशर ने कहा, अमेरिका की स्थापना ने यह सिद्ध कर दिया कि बड़े आधुनिक राज्य शासन के लिए अपना गणतांत्रिक स्वरूप स्वीकार कर सकते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि राज्य की भूमि का विस्तार निश्चित नहीं बताया जा सकता। गार्नर ने भी कहा है कि जिस प्रकार जनसंख्या के संबंध में कोई निश्चित मत नहीं बताया जा सकता, उसी प्रकार भूमि के संबंध में कोई नियम नहीं बनाना संभव है। बलनसली ने भी कहा कि इस प्रकार के नियम बनाने का प्रयत्न बेकार है। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से भी होती है कि एक और सनमेरनी और मोनाको कुछ वर्गमील के राज्य हैं तो दूसरी ओर रूस, अमेरिका, राज्य चीन और जैसे विशाल राज्य भी वर्तमान में स्थित हैं। फिर भी इतना निश्चित है कि राज्य की भूमि इतनी अवश्य होनी चाहिए जो अपनी उर्वरा शक्ति और खनिज पदार्थों के आधार पर राज्य की जनसंख्या का समुचित रूप से पालन कर सके और भौगोलिक एकता की स्थापना में सहायक हो। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि भूमि के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं सम्मिलित हैं। किसी राज्य के भूखंड में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं। सीमा के अंतर्गत भूमि, प्रदेश, भूमि प्रदेश का जल भाग जैसे झीलें, नहरें, नदियां आदि, प्रादेशिक जल क्षेत्र जैसे किसी राज्य के सागर तट के आसपास 3 मील या 12 मील का समुद्र। चौथा, राज्य की अपनी सीमा के अंतर्गत आने वाले समस्त आकाश पर भी अधिकार, लेकिन राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विदेशी कूटनीतिज्ञों, प्रतिनिधियों, शासकों एवं सीमा के अंदर अस्थायी रूप से रहने वाले विदेशी जहाजों पर राज्य का अधिकार नहीं होता। भूमि संबंधी तीसरी महत्वपूर्ण बात राज्य पर उसका प्रभाव है। भूमि राज्य के भौतिक आधार का परिचायक है, इसलिए राज्य के संबंध में जब हम भूमि की चर्चा करते हैं तो उसमें भौतिक परिस्थितियाँ, जलवायु, प्राकृतिक साधन इत्यादि भी सम्मिलित है। नदियाँ, पर्वत श्रेणियाँ, समुद्र तट इत्यादि राज्यों पर बहुत प्रभाव डालते हैं। भारत के लिए हिमालय और मिस्र के लिए नील नदी का महत्व छिपा नहीं है। प्राय नदियों, पहाड़ों, समुद्रों द्वारा राज्यों की सीमाएं निर्धारित होती हैं और जापान के स्वतंत्र अस्तित्व का कारण उस देश का स्वतंत्र तट है। प्रकृति कभी कभी अपनी सीमा को सुरक्षित तथा सुदृढ़ बना देती है और राज्य को चिंता मुक्त कर देती है। प्राकृतिक सीमा के अनुसार राज्य का सैनिक संगठन होता है। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार लोगों के पेशे भी बहुत कुछ निर्धारित होते हैं, जैसे भारत में कृषि और नॉर्वे के समुद्र तट पर मछली पकड़ने का व्यवसाय। राज्य की सीमा निर्धारित करने में खनिज पदार्थ का भी बहुत महत्व होता है। लोहा, पेट्रोल, जल विद्युत के साधन आदि ने इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी को महान अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बना दी। मध्य पूर्वीय देशों को महत्व तेल क्षेत्र के चलते हैं। आधुनिक सभ्यता का आधार औद्योगिक परिस्थितियां हैं, इसलिए इन वस्तुओं का बड़ा महत्व है। आधुनिक युद्धों के ये भी प्रमुख कारण हैं। जलवायु भी राज्य निर्माण में बहुत प्रभावकारी होते हैं। जो राज्य बहुत शीत वाले होते हैं वहाँ राजनीतिक विकास नहीं होता, क्योंकि वहाँ के लोगों का भरण पोषण में भी व्यस्त रहते हैं। चीन सभी राज्यों की जलवायु बहुत गर्म और आर्द्र होती है। वहाँ के लोग आलसी और विलासी होते हैं। वहाँ निरंकुश शासन पनपता है। केवल समशीतोष्ण जलवायु वाले राज्यों में ही सभ्यता, संस्कृति और राजनीति ने प्रगति की है। इतिहास इस बात का साक्षी है। लेकिन आधुनिक काल में विज्ञान की प्रगति ने जिस प्रकार अन्य कई बातों का महत्व घटा दिया है, उसी प्रकार भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव भी कम कर दिया है। वायु मार्ग में वृद्धि होने से नदियों, पहाड़ों और समुद्र तट द्वारा बनी हुई सीमाओं का महत्व क्षीण हो गया है। मनुष्यों ने वैज्ञानिक विजय करके बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण किया, नदियों को बांध डाला, प्रकृति पर अनेक प्रकार से अधिकार कर लिया। फिर भी इतना स्वीकार करना पड़ेगा कि भौगोलिक परिस्थितियों का काफी प्रभाव पड़ता है। अंत में जैसा कि गिलक्राइस्ट ने कहा, बहुधा सरकारों या शासकों की नीति के कारण भी राज्यों की सीमाओं और क्षेत्र में परिवर्तन होते रहते हैं। युद्ध, आक्रमण, समझौता आदि के द्वारा ये परिवर्तन ना होते हैं। तीसरा, सरकार। यदि जनसंख्या राज्य का व्यक्तित्व तत्व है और भूमि राज्य का भौतिक तत्व, तो राज्य सरकार का संगठनात्मक तत्व है। किसी निश्चित भूभाग के बासिंदे तब तक राज्य का रूप धारण नहीं कर सकते जब तक कि राजनीतिक संगठन ना हो। राजनीतिक संगठन तत्व सरकार का एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा राज्य के लक्ष्य एवं नीतियों का कार्यान्वयन किया जाता है। सरकार राज्य का व्यवहारिक पहलू है। यह राज्य की इच्छा को कार्य का रूप देता है। राज्य एक अमूर्त संस्था है। सरकार इस अमूर्त संस्था का मूर्त रूप है। सरकार के माध्यम से ही हम राज्य के संबंध स्थापित कर सकते हैं या राज्य तक पहुंच सकते हैं। गवर्नर ने भी ठीक ही कहा है कि सरकार राज्य का वह साधन या मशीन है जिसके द्वारा राज्य के उद्देश्य अर्थात समान नीतियों और समान हितों की पूर्ति होती है। तात्पर्य यह है कि सरकार राज्य रूपी भावात्मक धारणा की अभिव्यक्ति है। यह राज्य की आत्मा है। सरकार के बिना राज्य की कल्पना निरर्थक है। पुनः गवर्नर के शब्दों में शासन या सरकार के बिना जनता या प्रजा असंगठित और अराजक जनसमूह के रूप में ही होगी जो सामूहिक रूप से कोई कार्य करने में अक्षम होगी। अतः सरकार राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। राज्य का निर्माण इसके बिना संभव नहीं। यहाँ थोड़े से यह बतला देना भी उपयुक्त होगा कि सरकार के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे राजतंत्र, कुलीन तंत्र, जनतंत्र, निरंकुश तंत्र आदि। सरकार के संगठन के संबंध में यह याद रखना चाहिए कि इसके मुख्यतः तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका राज्य की इच्छा का निर्माण करती है, कार्यपालिका उसे कार्य रूप देती है तथा न्यायपालिका उसका पालन करवाती है। चौथा, संप्रभुता। ऊपर तीनों तत्वों से भी अधिक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। उसे राज्य का प्राण कहा जाता है। संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति जो राज्य में निवास करती है। समाज में अनेक संघ या संगठन होते हैं। इन संगठनों में भूमि हो सकती है, सदस्य हो सकते हैं, कार्य संचालन के लिए नियम और संगठन होते हैं, लेकिन उनमें संप्रभुता नहीं होती। यह गुण केवल राज्य में ही पाया जाता है, अर्थात संप्रभुता के बिना अन्य समुदायों का निर्माण नहीं होता। लेकिन संप्रभुता के अभाव में राज्य का अस्तित्व भी कायम नहीं रह सकता। उदाहरण स्वरूप 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत एक राज्य नहीं था, क्योंकि जनसंख्या, निश्चित भूभाग और सरकार के रहते हुए भी संप्रभुता संपन्न नहीं था। इसी कारण बिहार, केरल, पंजाब आदि राज्य नहीं, क्योंकि अन्य तत्वों के रहने के बावजूद उनमें संप्रभुता नहीं। संप्रभुता के दो स्वरूप हैं, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है राज्य अपनी सीमा के अंतर्गत सर्वोच्च है और उसे नागरिकों तथा समुदायों पर सर्वोच्च कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। सबको उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। बाहरी संप्रभुता से अभिप्राय यह है कि राज्य पर किसी प्रकार का बाहरी नियंत्रण नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जैसे युद्ध, संधि आदि में वह स्वतंत्र है। इस प्रकार संप्रभुता संपन्न राज्य आंतरिक तथा बाहरी दोनों पक्षों में किसी उच्च शक्ति के अधीन नहीं। मौलिकता, स्थायित्व, अपरियाजितता और अविभाज्यता संप्रभुता के प्रमुख लक्षण हैं। निष्कर्ष, उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता राज्य के अनिवार्य तत्व हैं। किसी एक तत्व के अभाव में राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। इन तत्वों के अतिरिक्त कुछ लेखकों ने अन्य तत्वों का उल्लेख किया है, जैसे आज्ञाकारिकता, अन्य राज्यों द्वारा मान्यता, राज्यों में सहजीवन आदि। लेकिन चार मान्य तत्वों में अन्य सभी सम्मिलित हो जाते हैं तथा ये आध्यात्मिक तत्व हैं जिनके अभाव में भी राज्य का अस्तित्व बना रह सकता है। तीसरा, राज्य और अन्य संस्थाओं में अंतर। कभी कभी राज्य शब्द का प्रयोग समाज, सरकार, राष्ट्र तथा अन्य समुदायों के बदले के रूप में कर दिया जाता है। ऐसा प्रयोग राज्य सरकार, समाज, समुदायों आदि को पर्यायवाची समझकर किया जाता है, लेकिन वस्तुतः इन शब्दों में अंतर है। ये एक दूसरे से भिन्न हैं। यहाँ हम देखेंगे कि राज्य और समाज, सरकार, राष्ट्र आदि में क्या भेद है। का राज्य और समाज में भेद किसी सामान्य उद्देश्य के लिए संगठित मनुष्यों के समुदाय को समाज कहते हैं। जब कुछ मनुष्य इच्छा अनुसार किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकत्रित हो जाते हैं तब समाज का सृजन होता है। जनसमूह एक सामान्य उद्देश्य तथा समान इच्छा समाज के लिए अनिवार्य तत्व है। समाज एक गांव से लेकर पूरे विश्व तक हो सकता है, लेकिन विभिन्न विद्वानों ने समाज और राज्य के बीच संबंध दर्शाने का प्रयत्न किया है। यूनानी विद्वान प्लेटो और अरस्तु ने राज्य और समाज के बीच समानता बतलाई है। राज्य और समाज में उन्होंने कोई अंतर नहीं माना, उनके लिए समाज ही राज्य था और मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक जीव दोनों थे। इस तरह की मान्यता का कारण यह था कि नगर राज्य मानव जीवन के प्रत्येक पहलू धार्मिक सांस्कृतिक आर्थिक राजनीतिक इत्यादि को स्पर्श करता था। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज शब्द को आदर्श राज्य के रूप में प्रयुक्त किया। उसका समाज शब्द का प्रयोग वस्तुवादी है। आदर्शवादी विचारक हीगेल और फासिस्ट मुसोलिनी ने भी राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं माना। हीगेल ने राज्य को सर्वव्यापी सर्वग्राही तथा सर्वोप्रिय बतलाया। मुसोलिनी का कहना था कि राज्य के बाहर या विरुद्ध कुछ भी नहीं जब राज्य में समाविष्ट है। दूसरे आदर्शवादी ग्रीन ने समाज का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया। इसका अर्थ संपूर्ण मानव समाज है, इसमें सभी मनुष्य आ जाते हैं। इसी अर्थ को उनसे अलिखी विश्वव्यापी बंधुत्व के शब्दों में अभिव्यक्त किया। राज्य समाज का एक अंश मात्र है। कांट ने भी कहा था कि राज्य बड़े समाज का सहायक है। कभी कभी समाज का प्रयोग अन्य छोटी संस्थाओं के लिए किया जाता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि समाज, भौतिक विज्ञान, वाद विवाद समाज आदि। लेकिन आधुनिक काल में समाज का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। समाज का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत आने सभी प्रकार के संघ आते हैं। मैकाइवर के शब्दों में जो राजनीति है उसे सामाजिक के साथ एकमत करना भयानक भूल है, जिसके कारण ना तो समाज है और ना ही राज्य को समझा जा सकता है। समाज वह पूर्ण व्यवस्था है जिसमें सभी नागरिक संबंध समाजिष्ट हो जाते हैं। बार्कर ने अपनी पुस्तक राजनीतिक विचारधारा 1848 से 1914 तक में राज्य और समाज में अंतर बतलाया है। उसने कहा है कि दोनों मानवीय हैं, दोनों का नैतिक उद्देश्य है, किंतु समाज सहयोग से कार्य करता है जबकि राज्य बल प्रयोग द्वारा आज्ञा का पालन करवाता है। समाज की नीतियाँ लचीली होती हैं, राज्य की नीतियाँ रूढ़िगत और कठोर तथा अनुदार होती हैं। राज्य संस्थाएं राजनीतिक होती हैं, समाज की नैतिकता सामाजिक होती है। राज्य की नैतिकता राजनीति होती है, समाज प्रथाओं द्वारा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, राज्य विधियों द्वारा अपनी इच्छाओं को प्रकट करता है। समाज का कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, राज्य का काम करने वाले राजनीतिक अधिकारी होते हैं। समाज और राज्य के भेदों को विशद व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है। पहला, समाज का जन्म राज्य से पूर्व हुआ था। मनुष्य आरंभ से ही समाज में रहता आया है। राज्य के प्रादुर्भाव के पहले ही मनुष्य का समाज का सृजन कर चुका था। दूसरा, राज्य के लिए एक निश्चित भूखंड अनिवार्य है, परंतु समाज के लिए निश्चित भूभाग की कोई आवश्यकता नहीं। राज्य एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत सीमित रहता है, लेकिन समाज के लिए सीमा की आवश्यकता नहीं। समाज एक परिवार से लेकर पूरे विश्व भर में फैला हो सकता है, इसलिए मैकाइवर ने कहा है कि राज्य समाज के भीतर स्थिर है, किंतु यह समाज का रूप तक नहीं। तीसरा, राज्य एक सुसंगठित संस्था है, परंतु समाज असंगठित भी हो सकता है। राज्य के लिए राजनीतिक संगठन या सरकार आवश्यकता है, लेकिन समाज के लिए राजनीतिक संगठन या सरकार कोई आवश्यक नहीं। उदाहरणतः ऐसी कम उम्र के सामाजिक समूह का कोई राजनीतिक संगठन नहीं। चौथा, राज्य से व्यक्तियों के राजनीतिक संबंध का बोध होता है। राज्य का उद्देश्य केवल राजनीति है। समाज के अंतर्गत व्यक्तियों के राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि सभी पहलू आते हैं। समाज का उद्देश्य शक्ति के राजनीतिक, नैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि पक्षों को समुन्नत करना है। पांचवा, राज्य का प्रमुख तत्व संप्रभुता है। राज्य के पास सर्वोच्च सत्ता है। सभी को उसकी आज्ञाओं का अनिवार्यतः पालन करना पड़ता है, लेकिन समाज के पास संप्रभुता नहीं। उसकी आज्ञाओं का पालन या आग्रह परंपरा, नैतिक विचार तथा जनमत के प्रभाव के कारण होता है, शक्ति के कारण नहीं। छठा, राज्य के निर्माण में चार तत्वों का हाथ होता है, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। लेकिन समाज के लिए केवल जनसंख्या तथा भूमि चाहिए। सातवां, समाज अपनी भावनाओं को सामाजिक प्रथाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं इत्यादि द्वारा व्यक्त करता है, परंतु राज्य की इच्छा कानून या विधि द्वारा व्यक्त होती है। आठवां, साल्टाउ ने समाज को स्वतः उत्पन्न एक स्वाभाविक संस्था और राज्य को मनुष्य की संकल्प शक्ति एवं तर्क की उपज बतलाया है, लेकिन अरस्तु ने राज्य को भी मानव स्वभाव में निहित पाया। नौवां, राज्य समाज के अनेक समुदायों में एक है। इसका क्षेत्र समाज के क्षेत्र से सीमित है। मैकाइबर ने कहा है कि राज्य एक संगठन है जो ना तो समाज का समवयस्क है और ना समाज के सामने व्यापक। वह समाज के अंतर्गत कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए स्थापित एक निश्चित व्यवस्था है। समाज और राज्य दोनों के बीच कोई बातों में अंतर होने पर भी दोनों के बीच एक बड़ा घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक और सामाजिक संगठन राजनीतिक संगठन की आधारशिला है और दूसरी ओर राज्य समाज में शांति और सुव्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। राज्य और समुदाय में अंतर। समाज में मनुष्यों के विभिन्न सामान्य उद्देश्य होते हैं। उन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनुष्यों का समूह संगठित होता है। इसी संगठन को समुदाय कहते हैं। अतः समुदाय उस संगठन को कहते हैं जिसे कुछ व्यक्ति मिलकर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वेच्छा से बनाते हैं और उसके संचालन के लिए स्वयं नियमों का निर्धारण करते हैं। मैकाइवर ने समुदाय की परिभाषा देते हुए कहा है कि समुदाय एक समूह होता है जो सामान्य रूप से किसी सामान्य हित या हितों के समूह की पूर्ति के लिए संगठित होता है। समाज इन्हीं समुदायों का संकलन है। बहुलवादी विचारकों का तो कहना है कि राज्य भी समाज के इन्हीं समुदायों में से एक है और समस्त स्तरीय है, लेकिन वस्तुतः राज्य एक विशिष्ट समुदाय है जो अन्य समुदायों से सर्वथा भिन्न तथा उच्च है। राज्य तथा अन्य समुदायों में निम्नलिखित अंतर है। पहला, राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, परंतु समुदायों की सदस्यता ऐच्छिक। कोई व्यक्ति मनचाहे रूप से किसी समुदाय में संबंध विच्छेद कर सकता है, लेकिन उसे किसी राज्य का नागरिक ही रहना पड़ेगा। राज्य की सदस्यता अपने आप प्राप्त हो सक जाती है, जबकि समुदाय की सदस्यता चाहने पर। दूसरा, कोई व्यक्ति एक ही समय में कई समुदायों का सदस्य हो सकता है। वह एक ही समय में एक राजनीतिक दल के साथ संबंध जोड़ सकता है, एक फुटबॉल क्लब का सदस्य हो सकता है और एक वाद विवाद परिषद में भाग ले सकता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक या दो से अधिक राज्यों का नागरिक नहीं हो सकता। एक राज्य की सदस्यता का परित्याग करने के बाद दूसरे राज्य की सदस्यता को वह ग्रहण कर सकता है। तीसरा, राज्य की एक भौगोलिक सीमा होती है, उसका एक निश्चित भूभाग होता है। इसके विपरीत समुदाय की सीमा को भौगोलिक दृष्टिकोण से सीमित नहीं किया जा सकता, जैसे रामकृष्ण मिशन, रेड क्रॉस सोसाइटी आदि। चौथा, राज्य लगभग स्थायी संगठन है। जबकि अन्य समुदाय अस्थाई किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के बाद प्राय समुदाय भंग कर दिए जाते हैं, लेकिन राज्य का अस्तित्व सदा बना रहता है। इसलिए हम प्रतिदिन अनेक समुदायों को बनते बिगड़ते देखते हैं, लेकिन राज्यों को ज्यों का त्यों बना हुआ रहता है। पांचवा, राज्य तथा अन्य समुदायों के अस्थायीपन का कारण उद्देश्य में विभिन्नता है। राज्य का उद्देश्य बहुमुखी तथा व्यापक है। वह नागरिक जीवन में प्रत्येक पहलू को छूता है। उसका उद्देश्य व्यक्ति को निरंतर विकास है। इस विकास का कोई अंत नहीं, अतः राज्य के लक्ष्य की पूर्ति का कोई अंत नहीं। इस प्रकार राज्य के उद्देश्य बहुमुखी तथा चिरंतन है। इसके विपरीत समुदाय का उद्देश्य विशिष्ट और सीमित होता है। राज्य की भांति समुदाय का उद्देश्य नागरिकों का सामान्य हित नहीं, बल्कि वह नागरिक जीवन के किसी विशेष पहलू या किसी विशेष उद्देश्य से संबंधित है। छठा, राज्य के ऊपर कुछ ऐसे कार्यों का उत्तरदायित्व है जिसे किसी समुदाय को नहीं सौंपा जा सकता। ऐसे कार्यों में देश की बाहरी सुरक्षा तथा आंतरिक सुव्यवस्था प्रमुख है। मैकाइवर के शब्दों में राज्य का वह विशिष्ट कार्य जिससे अन्य समुदायों से उसका भेद हो जाता है, सुरक्षा की स्थापना और उसको बनाए रखना। अन्य समुदाय ना तो इस कार्य को करने का वादा करते हैं और ना ही वे कर सकते हैं। सातवां, राज्य तथा समुदाय में एक मौलिक अंतर यह है कि राज्य के पास संप्रभुता शक्ति है, जबकि समुदाय के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं। राज्य अपने आदेशों का पालन कानूनी शक्ति द्वारा करवा सकता है। उसके आदेशों का उल्लंघन करने वाले को दंडित किया जा सकता है, लेकिन समुदाय आदेशों के उल्लंघनकर्ता को न दंड दे सकता है और न कानूनी दबाव ही डाल सकता है। वह अपराधी को सिर्फ सदस्यता से वंचित कर सकता है। अंत में, सभी समुदाय राज्य द्वारा नियंत्रित तथा नियमित होते हैं। राज्य की सीमा के अंतर्गत चर्च, राजनीतिक दल, सांस्कृतिक समुदाय और श्रम संघ, खेलकूद क्लब आदि सभी प्रकार के संघ राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। यदि कोई संघ सामान्य हित के विरुद्ध कार्य करता है तो राज्य उसे भंग भी कर सकता है। तात्पर्य यह है कि राज्य समाज का सर्वशक्तिशाली तथा सर्वोपरि संघ है, जिसके अंतर्गत अन्य समुदायों का अस्तित्व कायम रहता है। खैर, राज्य और सरकार में अंतर। कुछ ऐसे राजनीतिक विचारक हुए जिन्होंने राज्य और सरकार को एक ही माना। फ्रांस का सम्राट लुई चौदहवां कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ। फ्रांस के लेखक हेनरी कॉर्डन ने कहा कि हम अच्छी तरह से समझ गए हैं कि राज्य क्या है। युग के अनुसार राज्य चौदहवां लुई, पहला नेपोलियन, द्वितीय विलियम, जॉर्ज निकोलस, मुसोलिनी, हिटलर आदि तथा उनके मंत्री हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में कुछ नहीं। इसी तरह जीडीएच कोल ने लिखा, राज्य क्या है? राज्य एक समुदाय की शासन व्यवस्था के अतिरिक्त कुछ नहीं। इसी संबंध में लॉस्की ने लिखा है कि राज्य वस्तुतः कुछ व्यक्तियों का संगठन है, जिस पर राज्य की इच्छाओं को व्यवहारिक जगत में मूर्त रूप देने का उत्तरदायित्व होता है। ड्यूगवी, डब्ल्यू जी सुमनर और ए जी केलरल ने भी यह मत प्रकट किया। इस दृष्टि से हम भारत राज्य, अमेरिकी राज्य आदि के लिए भारत सरकार और अमेरिकी सरकार आदि शब्दों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार राज्य का एक सरकार के पर्यायवाची उपयोग से कभी कभी भ्रम पैदा हो जाता है। राज्य के इस भ्रमकारी प्रयोग का कारण ऐतिहासिक है, क्योंकि आरंभ में राज्य का प्रयोग आज की भांति विशिष्ट अर्थ में नहीं किया जाता था, लेकिन आज राज्य और सरकार में अंतर स्थापित किया जा सकता है। पहला, राज्य प्रधान है और सरकार उसका प्रतिनिधि। राज्य मनुष्यों का सर्वोच्च समुदाय है, जिसकी इच्छा की कार्यान्वयन के लिए सरकार का एक यंत्र है। लॉस्की के विचार अनुसार सरकार राज्य का अभिकर्ता है, जिसका अस्तित्व उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। दूसरा, राज्य सरकार की अपेक्षा व्यापक है। राज्य एक सर्वव्यापक संगठन है, जिसमें सभी नागरिक सम्मिलित हैं, लेकिन सरकार राज्य का एक अव्ययी संगठन है जिसमें सिर्फ शासक वर्ग की गणना की जाती है, शासित वर्ग की नहीं। तीसरा, निश्चित भूभाग राज्य का एक अनिवार्य तत्व है, लेकिन सरकार के लिए इस तत्व की आवश्यकता नहीं, सरकार तो राज्य का स्वयं एक तत्व है। चौथा, उत्पत्ति के दृष्टिकोण से राज्य और सरकार में अंतर है। राज्य की उत्पत्ति का स्रोत मानव स्वभाव है और उसका आधार मनुष्य की इच्छा शक्ति तथा तर्क है, लेकिन राज्य एक कृत्रिम संगठन है जिसका निर्माण राज्य के बासिंदों की इच्छा से होता है। पांचवा, राज्य और सरकार के स्वरूप में विभेद है। राज्य एक निराकार या अमूर्त संस्था है और भावात्मक विचार है, इसका कोई स्थूल रूप नहीं जिसे हम देख सकें। इसके विपरीत सरकार एक स्पष्ट तथा साकार संगठन है जिसे हम देख सकते हैं। सरकार के द्वारा राज्य के अस्तित्व की अनुभूति होती है। छठवां, राज्य संप्रभुता संपन्न संस्था है। इसकी सत्ता असीमित तथा अनियंत्रित है। इसके विपरीत सरकार की सत्ता मर्यादित तथा नियंत्रित है, अर्थात राज्य का आवश्यक तत्व संप्रभुता है, लेकिन सरकार के लिए यह तत्व आवश्यक नहीं। उदाहरणतः आज़ादी के पूर्व सार्वभौमिकता के अभाव में भारत एक राज्य नहीं था, लेकिन भारत सरकार था। सातवां, राज्य और सरकार में एक महत्वपूर्ण भेद यह है कि राज्य स्थायी है जबकि सरकार अस्थायी। राज्य के अस्तित्व पर समय या परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता, वह एक स्थायी एवं शाश्वत संगठन है, लेकिन समय या परिस्थिति के अनुसार सरकार के स्वरूप में भिन्नता आती रहती है तथा सरकार बनती बिगड़ती रहती है। हाल में पाकिस्तान, टर्की, सीरिया आदि देशों में परिवर्तन हुए, लेकिन राज्यों को ज्यों के त्यों 1917 में रूस में जौरशाही का अंत हुआ, साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, लेकिन इसे रूसी राज्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आठवां, राज्य की शक्तियां पूर्णतः मौलिक है, लेकिन सरकार की शक्तियां मौलिक नहीं क्योंकि उसमें शक्तियां राज्य के द्वारा प्राप्त की जाती हैं। इस प्रकार राज्य एवं सरकार में भेद स्थापित किया जाता है, लेकिन इतना तो मानना ही होगा कि वे एक दूसरे से बहुत निकट हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व निरर्थक है। इसका अर्थ यह है कि सरकार राज्य की विधि संघर्ष शक्ति का प्रयोगाधिकारी है। इसलिए क्रोसे ने कहा है कि जो व्यक्ति भावात्मक के स्थान पर वास्तविकता का भी बोध करते हैं, उनके लिए वस्तुतः राज्य ही सरकार है। साल्टाओ का कथन है कि शासन तंत्र का स्वरूप ही राज्य के राजनीतिक स्वरूप के अंतर को स्थिर करता है। जब हम कहते हैं कि ब्रिटेन एक वैधानिक राज्य है, तब हमारा राज्य और शासन तंत्र दोनों से ही आशय होता है। छठवां, राष्ट्र और राज्य में भेद। कभी कभी राज्य और राष्ट्र का प्रयोग समान अर्थों में कर दिया जाता है। उदाहरणतः भारत राष्ट्र का व्यवहार कर देते हैं, जबकि हमारा आशय भारत राज्य से है। राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ में राष्ट्र का प्रयोग राज्य के स्थान पर किया जाता है, लेकिन इस तरह के प्रयोग राजनीति विज्ञान की दृष्टिकोण से गलत हैं। वस्तुतः राज्य और राष्ट्र में पर्याप्त अंतर है। राज्य और राष्ट्र के बीच भेद बतलाने के लिए पहले हमें राष्ट्र का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। राष्ट्र ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विशेषतः भाषा तथा प्रथाओं की एकता के कारण परस्पर संबंध हो, जो सामान्य अतीत से एकता के पास में आबद्ध हो, अपने में एकता की भावना का अनुभव करते हों और समान उद्देश्य की प्राप्ति जिनका लक्ष्य हो। लेकिन विद्वानों ने राष्ट्र की परिभाषा दी है। रेमजे मेयर के शब्दों में राष्ट्र ऐसे लोगों का समुदाय है जो कुछ घनिष्ठ संबंधों के कारण आपस में स्वभावतः आबद्ध अनुभव करते हैं। ये संबंध उनके लिए इतने सुदृढ़ और वास्तविक होते हैं कि वे मिलकर सुखपूर्वक रह सकते हैं। लॉर्ड ब्राइस के विचार अनुसार राष्ट्र ऐसी राष्ट्रीय इकाई है जो कि एक राजनीतिक समुदाय के रूप में हो और जो स्वतंत्र होने या होने की इच्छा रखता हो। बर्गेस की परिभाषा के अनुसार राष्ट्र भौगोलिक एकता वाले एक प्रदेश में जाति विषयक एकता वाली जनसंख्या है। ड्यूबी के अनुसार किसी सामाजिक समूह के प्रत्येक व्यक्ति में एक निश्चित समय पर सजगता की इस भावना का अस्तित्व के निवास भूमि और व्यक्तियों के बीच अभिन्न और प्रबल पारस्परिक निर्भरता है राष्ट्र का निर्माण करता है। गार्नर के शब्दों में एक राष्ट्र सांस्कृतिक समानता का एक सामाजिक समूह है जो अपने मानसिक जीवन और अभिव्यक्ति की एकता के विषय में पूर्ण चेतन एवं दृढ़ निश्चयी है। और राज्य राष्ट्र में निम्नलिखित अंतर हैं। पहला, राज्य का संबंध मनुष्य के बाहरी राजनीतिक संगठन से है, लेकिन राष्ट्र का संबंध मनुष्य की भावात्मक तथा आध्यात्मिक एकता से है। हॉलैंड रोज ने राष्ट्रीयता को एक मनोभाव का आध्यात्मिक विचार या सिद्धांत बतलाया। गिलक्राइस्ट ने राष्ट्रीयता का आध्यात्मिक सिद्धांत और भावना का प्रतीक बतलाया। जर्मन ने राष्ट्रीयता को संयुक्त भावनाओं का एक स्वरूप कहा। उसी के शब्दों में राष्ट्रीयता धर्म की भांति आत्मिक है, राज्य अभौतिक है, राष्ट्रीयता मनोवैज्ञानिक, राज्य राजनीतिक है, राष्ट्रीयता एक मनोदशा, राज्य एक कानून की स्थिति है, राष्ट्रीयता एक आध्यात्मिक अधिकार, राज्य एक दायित्व है, राष्ट्रीयता जीवन और चिंतन की एक विधि, राज्य जीवन के समस्त सभ्य तरीकों की अभिन्न दशा है। दूसरा, राष्ट्र का आभार मनुष्यों में पारस्परिक एकता की भावना। राज्य के लिए पारस्परिक एकता की भावना आवश्यक नहीं, एकता के अभाव में ही राज्य चार तत्वों जनसंख्या भूमि सरकार और संप्रभुता के आधार पर कहा जा सकता है। तीसरा, राज्य के अस्तित्व के लिए चार तत्व जनसंख्या भूमि सरकार और संप्रभुता अपरिहार्य है। ये तत्व स्थिर हैं, लेकिन राष्ट्र के निर्धारक तत्व सदा परिवर्तनशील। भाषा धर्म अतीत आदि तत्व एकता की भावना उत्पन्न करते हैं, राष्ट्र निर्माण करते हैं। इनमें कोई भी तत्व राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, ये बदलते रहते हैं। चौथा, राज्य के लिए संप्रभुता एक अनिवार्य तत्व है, परंतु संप्रभुता के अभाव में भी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। संप्रभुता के गुण के आधार पर एक राज्य किसी दूसरे राज्य के अधीन रहकर अपना अस्तित्व कायम नहीं रह सकता, जबकि एक राष्ट्र किसी दूसरे राज्य की अधीनता में रहकर भी अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है। इसके अलावा राज्य अपने आदेशों का पालन नागरिकों के बल से प्रयोग के आधार पर करवा सकता है, लेकिन राष्ट्र के पास इस तरह की कोई संगठित राज्य की शक्ति नहीं जिससे वह नागरिकों को अपने नियम का पालन करने के लिए विवश कर सके। उसके पास केवल नैतिक और आध्यात्मिक प्रार्थना की शक्ति है। पांचवा, सरकार भी राज्य के लिए आवश्यक है, वह राज्य की आत्मा है, लेकिन राष्ट्र के लिए सरकार जैसे राजनीतिक संगठन की कोई आवश्यकता नहीं। छठवां, एक राष्ट्र एक राज्य का सिद्धांत गलत साबित हो चुका है। राष्ट्र के अंतर्गत कई राज्य हो सकते हैं और एक राष्ट्र के कई राज्यों में विभाजित हो सकता है। सातवां, राज्य एक सुसंगठित संस्था है, जबकि राष्ट्र संगठित और असंगठित दोनों ही हो सकता है।